सिद्धेश्च ॐ नमः सिद्धेश्च ॐ नमः सिद्धेश्च ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय धवलंगते णाऊरियसयलभुवनभवनगणो केवलणाणशरीरो अणंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी। प्रथम पुस्तक का प्रथम अधिकार जो पेज दोष विहत्ति नाम का अधिकार है, उसकी चर्चा में अभी हम 92 पृष्ठ पर आ गए हैं, 92। कल शंकाकार ने शंका पूछी थी लंबी चौड़ी है? उनका इतना ही कहना था कि जिनेंद्र भगवान ने श्रावकों के भी आचार कहे हैं। आपको कोई नाम मालूम है अंग का कि जिसमें श्रावकों के क्रियाएं आचार्य आचार आदि का वर्णन है? आचारांग में तो मुनियों के आचार का है, श्रावकों के आकार श्रावकाचार नहीं, 12 अंगों में श्रावकाचार नहीं है, उपासकाध्ययन अंग कितने नंबर का है? 7वां है। छठा तो ज्ञातृ कथा है ना, या नाथ कथा, उसके बाद देखो। तो ये प्रश्न पूछा था, उसके लिए उन्होंने विस्तार से दान में क्या क्या होती है हिंसा, पूजा में कैसी हिंसा होती है, जिन मंदिर बनवाने में कैसी कैसी हिंसा होती है, ऐसे शंकाकार ने प्रश्न उठाए थे। अब उसका समाधान हम पढ़ेंगे 92 पृष्ठ पर नीचे समाधान। यहाँ पर पूर्वोक्त शंका का परिहार करते हैं, परिहार करते हैं ना, उसका खंडन करते हैं, उसका निराकरण करते हैं, उसका सही उत्तर उन्हें देते हैं। वह इस प्रकार है, यद्यपि तीर्थंकर पूर्वोक्त प्रकार का उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्म बंधन नहीं होता है, क्योंकि यानी उपदेश देने वाले तीर्थंकरों को वैसा कर्म बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिन देव के 13वें गुणस्थान में कर्मबंध के कारणभूत मिथ्यात्व असंयम और कषाय का अभाव हो जाने से, ये जान से हुआ, जाने से देखो हम देखते हैं कर्मबंध के कारण कौन कौन है। तो कर्मबंध 4 प्रकार का होता है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो स्थिति और अनुभाग कब तक बनता है? तो जब तक कषाय है। तो कषाय में अकेला कषाय नहीं समझना, कषाय तक के जो आश्रय है, मिथ्यात्व अविरति और कषाय को, वहां तक के सभी को कषाय कहा। और योग जो है, योग से अकेले अकेला योग जहां पर है 13वें गुणस्थान में, जो 11वें 12वें और 13वें में कषाय नहीं है और योग है, तो एकमात्र 7 वेदनीय प्रकृति बनती है, और वो भी स्थिति अनुभाग बिना वाले, स्थिति नहीं बनती उसमें, आते उसी समय निकल जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व असंयम और कषाय का अभाव हो जाने से वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का बंधन नहीं होता है। अन्य कर्मों का बंध कहाँ तक था? 13वें वाले को नहीं था, तो 12वें वाले को होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ तक? 10वें तक था। तो 10वें तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और किसका था जिसकी विच्छित्ति हुई? मोहिनी तो पहले ही विच्छित्ति हो, नाम और गोत्र में उच्च गोत्र, और नाम की कौन सी रह गई थी? यश कीर्ति। फिर इसको पढ़ते हैं पूरे वाक्य को कि तीर्थंकर पूर्वोक्त प्रकार का उपदेश देते हुए भी उनको बंद नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है? तो जिनदेव के 13वें गुणस्थान में कर्म बंध के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम और कषाय का अभाव हो जाने से वेदनीय कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों का बंधन नहीं होता है। वेदनीय कर्म का बंध होता हुआ भी, भले उसका बंध है फिर भी उसमें क्या विशेषता है वो बताते हैं। उसमें स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता है, क्योंकि वहां पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध के कारणभूत कषाय का अभाव है। स्थितिबंध के कारणभूत परिणामों को स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं, और जो अनुभाग बंध के कारणभूत जो परिणाम है उसको अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। कषाय में तो ये भी आते हैं ना, तो उनका भी अभाव है। हाँ, पांच परावर्तन में ये कैसे क्रम से होते हैं, भाव परावर्तन में इसको लिया है विस्तार से। अब 13वें गुणस्थान में योग है, इसलिए वहां पर प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के अस्तित्व का भी कथन नहीं किया जा सकता। यानी अन्य प्रकृति का बंध होता हो वगैरह वो भी बात नहीं बनती, क्योंकि स्थिति बंध के बिना उदय रूप से आने वाले निषेकों में उपचार से बंध के व्यवहार का कथन किया गया है। यानी यहाँ भी जो बंध है वो व्यवहार से कहा गया है, क्योंकि वो एक समय मात्र भी स्थिति नहीं, आते ही उसी समय में चले गए, तो इसका ये बंद होना ये भी उपचार से है। जिनदेव देशव्रती श्रावकों के और सकल व्रती मुनियों के धर्म का उपदेश करते हैं, इसलिए उनके अर्जित कर्मों का संचय बना रहता है, सो भी बात नहीं है। क्या कहते हैं? ये उपदेश ऐसा देते हैं ना, मुनियों के और श्रावकों के आचार संबंधी उपदेश देते हैं, तो नया बंद भले नहीं करे, अर्जित यानी पहले जो बांधे थे उनका संचय बना रहे, नहीं उनकी खीरे नहीं, उनके संचय रहा करे, अर्जित यानी उपार्जन किया हुआ कर्म खीर नहीं जावे, वहीं पर संचित होकर रह जाए, ये तो बात हो जाएगी। ऐसे शंकाकार पूछेगा तो कहते हैं ऐसे भी बात नहीं है, क्योंकि उनके जिन नवीन कर्मों का बंध होता है जो कि उदय रूप ही है, अभी किसका बंद हो रहा है? साता वेदनी का, जो कैसा है उदय रूप ही है, बंद जो है वो उदय होता हुआ ही बंद कहेंगे, बंद भी उपचार से है तो वो उदय रूप है। उनसे भी असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से वे प्रति समय पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करते हैं। उनसे भी यानी अभी एक समय में कितने परमाणु बांधते हैं कोई भी जीव, हाँ? एक समय प्रबद्ध जिसमें बोले अनंत परमाणु है, तो एक समय प्रबद्ध का बंध जो उदय रूप बंध है और निर्जरा कितनी हो रही है, असंख्यात समय प्रबद्ध होंगी, तो असंख्यात गुणी और वो भी श्रेणी रूप से। श्रेणी रूप से अर्थ क्या है? यहाँ हर समय 13वें गुणस्थान में हर समय एक एक समय प्रबद्ध का जो बंध है जो उदय रूप ही है और असंख्यात गुण श्रेणी रूप से निर्जरा है। पहले समय में जितने, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, चौथे समय में उससे असंख्यात गुणा, ऐसे असंख्यात गुणा श्रेणी कहा उसको। प्रति समय असंख्यात गुणा बढ़ जाना उसको यहाँ श्रेणी रूप कहा। पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करते हैं, इसलिए उनके कर्मों का संचय नहीं बन सकता, यानी निर्जरा हो ही नहीं, बने रहे ऐसा भी नहीं होता। हाँ, आपका प्रश्न है किसी केवली की आयु अधिक से अधिक कितनी होगी, तो कहेंगे 8 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अभी अंतिम 14वां गुणस्थान छोड़ेंगे, वहां भी निर्जरा तो है ही, निर्जरा की अपेक्षा 13वां 14वां दोनों को लेना पड़ेगा, तो क्या वहां तक असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? हाँ, प्रति समय असंख्यात गुणा, फिर भी जितनी अभी तक पूरी निकल गई है जो कर्म जो अंतिम समय में खेरेगा वो उससे भी असंख्यात गुणा होगा। ऐसा नहीं कि इतना खिर गया तो अभी लास्ट में थोड़ा रहेगा, तो मान लेते हम 10 समय तक खिरेगा, पहले समय से दूसरे समय असंख्यात गुणा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो पहले 9 के 9 समयों में मिलकर जितनी हुई ना, उससे 10वें समय में असंख्यात गुणा हो जाएगी। हाँ क्योंकि कितने समय हो जाएंगे, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो उनके पूरा 13वें गुणस्थान का काल बड़ा है इतना, तो उसमें भी असंख्यात गुणा श्रेणी रूप से वो निर्जरा होगी। इतने कर्म यानी अंदर कितने कर्म है स्टॉक, मुनि अवस्था से तो असंख्यात गुणा, 5वें गुणस्थान से असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, पर हम मुनियों की अपेक्षा से लेंगे, तब से लेकर असंख्यात गुणा निर्जरा हर समय चल रही है, और ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में असंख्यात गुणा का प्रमाण भी बढ़ता है, फिर भी सबसे अंतिम समय में ये सबसे असंख्यात गुणा कर्म वहाँ है, इसीलिए वो कर्म के भूभृत कहे हैं, कर्म के पर्वत। कहाँ सुना है कर्म भूभृत, कहाँ शब्द सुना है, कहीं तो पहचान वाला लगता है कि नहीं, वेत्तारम कर्म भूभृतम कहाँ है, मंगलाचरण में, इतना तो याद है, कौन से ग्रंथ का बोलो, समय सार में नहीं है, मोक्ष मार्गस्य नेत्तारम भेत्तारम कर्म भूभृता, अभी तो बोलो, मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र और अभी हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा अर्थ सुनेंगे, मोक्ष मार्गस्य नेत्तारम यानी जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेत्तारम कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वतों के भेत्तारे ने भेदने वाले हैं, यानी उनकी इतनी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है ना, भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी तत्वों के सभी द्रव्यगुण पर्यायों के ज्ञाता है, वंदे तद्गुण लब्धये उनको मैं नमस्कार करता हूँ, क्यों मुझे पैसा मिल जाए बच्चा हो जाए तद गुण लब्धे उनके गुण के जैसे गुण मेरे में प्रकट हो जाओ, गुण यानी यहाँ पर्याय हो, प्रकट पर्याय को यहाँ गुण कहा है,
यहाँ मूल बात तो भेत्तारम कर्म भू भ्रुताम बताना था आपको, यानी कर्म रूपी पर्वत, ये पर्वत टूटना कितनी मुश्किल बात है, ऐसे कर्म रूपी पर्वतों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया है, इसलिए तो उनको इतना ग्रेट कहते हैं, ये बात आप जो बताना चाहते थे वो ये है। आगे
हाँ, आप कहते हैं तो कोई, हमने ऐसा भी सुना है कि 15 अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं, हाँ तो उतने अंतर्मुहूर्त में वो उनकी निर्जरा वगैरह चलती रहती है। देखो जब तक उस क्षपक श्रेणी में जब तक आता है, प्रत्येक जीव के अलग अलग अपने अपने पोजीशन है, हम कहेंगे दो जीवों के परिणाम सर्वथा मिलते नहीं है, तो पूर्व अवस्था में कितनी ही बार उन्होंने कर्म कितने खिपाया भी होता है, किसी ने तो पूर्व भूमि में अनेक बार संयम धारण किया है, किसी ने तो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरे है चार चार बार, तो क्षपित कर्मांशिक ऐसे हो जाते हैं, या उतना पुरुषार्थ उग्र है, नहीं नहीं 8 वर्ष में 15 अंतर्मूर्त में कैसे हो जाए, वो केवल ज्ञान होने की बात है, मोक्ष होने की कहाँ, अगर 15 अंतर्मूर्त में मोक्ष होता है ऐसा अगर कहेंगे तो उनका वो मुनि अवस्था का काल बड़ा होगा या पहले वाला काल बड़ा होगा, जब 15 अंतर्मूर्त आयु में शेष रहते हैं तब तो उन्होंने केवल ज्ञान अंत में प्राप्त किया ऐसा कहेंगे ना, केवल ज्ञान प्राप्त होना अलग बात है और मोक्ष प्राप्त होना अलग बात है। भरत चक्रवर्ती की बात आती है, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करने पर क्या किया था अंतर्मूर्त में, क्या मोक्ष प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर केवली अवस्था में रहे बहुत लंबे काल तक, उपदेश भी देते रहे, वो मोक्ष नहीं गए इमीडिएट, केवल ज्ञान प्राप्त करने में उनको कम से कम काल लगा था, मुनि दीक्षा धारण करने के पश्चात अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मोक्ष नहीं गए वो इमीडिएट। अभी गिनेंगे तो 15 कहेंगे या भले अंतर्मुहूर्त में उतनी हो गई, तो जितने कर्म थे उसमें उस प्रमाण में खिरेंगे। हाँ, गुणश्रेणी अलग होती है ना। गुणश्रेणी कैसे होती है, जितने ऑलरेडी पड़े हैं कर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी स्थिति भी पड़ी है, विशुद्धि भी कारण है उसका, तो विशुद्धि तो अन्य भी क्षपकों के होगी। देखो नवे गुणस्थान से लेकर विशुद्धि सबकी समान है। अनिवृत्ति कहा ना, परंतु सत्ता में स्थिति कितनी पड़ी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने कर्मों में होता है गुणश्रेणी में, उसमें वेरिएशन होगा। और सत्ता में कितनी स्थिति बाकी है, कहेंगे सबके अंत कोड़ा कोड़ी, परंतु उसमें भी वेरिएशन है ना। अभी वो तो गणित का विषय है अलग। अभी यहां हमने कहा देखो, कर्मों का संचय भी नहीं बना सकते, यानी खिरी नहीं बने रहे ऐसा भी नहीं हो सकता, एक बात है। अब कोई पूछेगा कि उनके मनोवचन काय की प्रवृत्ति तो दिखाई देती है, तो कहते हैं और तीर्थंकर के मनोवचन तथा काय की प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक नहीं होती है जिससे उनके नवीन कर्मों का बंद होवे। क्या उनके वचन की प्रवृत्ति तो हम देखते हैं, काय की भी देखते हैं क्योंकि उनका गमन भी होता है, मन की भी प्रवृत्ति होती होगी। हाँ, भावमन है ही नहीं है, भावमन क्षोभम ज्ञानी को होता है, ये द्रव्यमन है। तो द्रव्यमन में जो कुछ मनोवर्गणा के परमाणुओं का ग्रहण आदि जो कुछ चलता है उस अपेक्षा से यहाँ, और उनके मनोयोग भी उपचार से कहा है, मन की ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती कि मन के द्वारा जानने रूप प्रवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं इच्छा पूर्वक नहीं होती जिससे उनके नवीन कर्मों का बंध होवे। तो हम तो इच्छा पूर्वक ही हाथ पैर चलाते हैं ना। तो ये उनकी जो क्रियाएं हैं उसको कौन सी क्रियाएं कहते हैं मालूम है? इरियापद वो आश्रय हो गया। हाँ, अरविंद भाई ने कुछ कहा, उदय की क्रिया, नाम कर्म का उदय चल रहा है उनका, तो उस रूप उनके कोई उदय भाव रूप क्रियाएं हैं। मोह ये है नहीं ना वहां पर, तो उससे बंद होने की, ये शरीर की या वचन की क्रिया से उनके बंद होवे तो परद्रव्य से बंद होने लगेगा। हमें तो होता है कि नहीं परद्रव्य से बंद। उसके साथ जो इच्छाएं है मोह राग द्वेष के परिणाम है उससे बंद है। जड़ की क्रिया से बंद होने लगा तो जीव कभी बंद से मुक्त ही नहीं होगा। जिस प्रकार सूर्य और कल्प वृक्षों की प्रवृत्तियां स्वाभाविक होती है, एक कल्प वृक्ष की प्रवृत्ति है ने, जैसे सूरज उगता है ऊपर आता है फिर ढल जाता है, ये तो उसका स्वाभाविक जो नेचुरल जो है। कल्प वृक्ष में भी जो कुछ उसमें बातें बनती है प्रकाश आदि प्रकाशित होते हैं, सूर्य के द्वारा प्रकाश होना, कल्प वृक्ष के द्वारा प्रकाश आदि मिलना। कल्प वृक्ष के द्वारा तो ये 10 प्रकार की बातें होती है ना, वो स्वाभाविक होती है। उसी प्रकार उनके भी मनोवचन और काय की प्रवृत्तियां स्वाभाविक अर्थात बिना इच्छा के समझना चाहिए कहा भी है। ये 40 नंबर का जो उन्होंने उद्धरण दिया है, ये उनके कौन सा राग है? काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो नाभवं स्तव मुनेश्चिकीर्षया ना समीक्ष भवतः प्रवृत्तयो धीरतावकम चिंत्यमीहितम्। ये इसका भी पहले हम अर्थ देखेंगे। काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयो नाभवंस्तव, हे मुने मैं कुछ करूं इस इच्छा से आपके मन वचन और काय की प्रवृत्तियां हुई हो यह बात नहीं है, और वे प्रवृत्तियां आपके बिना जाने हुई है यह भी नहीं है। बिना जाने हुए यह भी नहीं है। पर होती अवश्य है। क्या कहते हैं ये मुनियों के बदले हम अपने आप को संबोधन करें कि जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती है वो हमारे इच्छा से नहीं होती है, बराबर। फिर भी बिना जाने हुए ऐसा भी नहीं है, वो हो रही है और हम नहीं जान रहे ये भी नहीं है, पर होती अवश्य है। इसलिए हे धीर, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं। अचिंत्य यानी चिंता से यानी सोचने से नहीं होती है, अर्थात संसार में जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं वे इच्छा पूर्वक होती है, और जो प्रवृत्तियां बिना विचारे होती हैं वे ग्राह्य नहीं मानी जाती। बिना जाने हुए ऐसा नहीं है, नहीं वो उस समय इच्छा तो हुई थी ऐसा कहना, और जो बिना इच्छा के होती है बिना विचारे होती है वे ग्राह्य नहीं मानी जाती। पर यही आश्चर्य है कि आपकी प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक न होकर भी भव्य जीवों के लिए उपादेय हैं, यानी यहाँ तो स्तवन किया है तीर्थंकरों का कि आपकी प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक न होकर भी भव्य जीवों के लिए उपादेय है। कौन सी प्रवृत्तियां? अभी यो दिव्य ध्वनि का खिरना आदि जो प्रवृत्तियां हैं भगवान की, बिना इच्छा के होने पर भी भव्य जीवों के लिए उपादेय है। आगे का 41 नंबर का उदाहरण हम देखेंगे। पहले वाला कहा था बृहत्सर्व और मूलाचार, ठीक। रत्तो वा दुठो वा मूढ़ो वा जम्पुंजयी पोम हिंसा वितथ जायै तम्हासो हिंसो होई। रागी द्वेषी अथवा मोही पुरुष जो भी क्रिया करता है उसमें हिंसा अवश्य होती है, और इसीलिए वह पुरुष हिंसक होता है। तात्पर्य यह है कि रागादि भाव ही हिंसा के प्रयोजक है, उनके बिना केवल प्राणों का वियोग होने मात्र से हिंसा नहीं होती। पुरुष ने आत्मा जीव, हाँ। ये इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी हमने देखा है ना, हाँ। नहीं नहीं उस पुरुष की बात नहीं, ये जो रागादि ही उसका प्रादुर्भाव होना ही हिंसा है। आपका क्या प्रश्न? श्लोक के लास्ट 41 नंबर का श्लोक क्या है, 40 का कि 41 का? 40 का। देखो, संसार में जितनी भी प्रवृत्तियां होती है वे इच्छा पूर्वक होती है। अभी मोही जीवों की जो प्रवृत्तियां हैं वहां तो उनकी इच्छा चल ही रही है, और जो प्रवृत्तियां बिना विचारे होती है वे ग्राह्य नहीं मानी जाती। नींद में पैर ऐसा हिल गया तो उसको तो थोड़े हम उसकी क्रिया भी नहीं कहेंगे, उसको तो निग्लिजिबल, हम उसको लक्ष्य में नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते। पर यही आश्चर्य है कि आपकी प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वक न होकर भी, आपके किसको कह रही है? भगवान को। आप पहले लिखा था ना हे मुने, मुनियों को संबोधन करते हैं, अब यहां मुने ने भगवान को कहेंगे, इच्छा पूर्वक न होकर भी भव्य जीवों के लिए उपादेय है, क्योंकि उस उपदेश से भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं, इसलिए उनके लिए वे उपादेय है। भगवान को बता रहे हैं, पहले संबोधन किया था हे मुने करके। अब आगे ये हो गया ना अपना, ओ ये सब गाथा ही गाथा है, पुरुषार्थ सिद्धि का है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवति हिंसा तेषां में उत्पत्ति हिंसा इति जिनाकमस्य संक्षेपः। हाँ, ऊपर हम पढ़ेंगे 42 नंबर। रागादीनम पा अहिंसकत्तम तिदेशीयम समये तेसिं चे उत्पत्ति हिंसेति जिनेहिनी दिठा। ये तत्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ वार्तिक में से लिया है और उसकी तुलना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के श्लोक से की है, यानी वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो श्लोक लिया है उसके लिए ये रेफरेंस है, उस पर से उन्होंने वो श्लोक बनाया। क्या कहते हैं यहाँ उसका अर्थ देखते हैं। रागादि का नहीं उत्पन्न होना ही अहिंसकता है, ऐसा जिनागम में उपदेश दिया है। ये जिनागम शब्द कहाँ आया? ऊपर रागादीनम अनुपा अहिंसकत्तम तिदेशीयम समये 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 ने जिनागम में, कल समय शब्द से आई थी ना बात, स्व समय पर समय, तो दूसरे भी जो कहेंगे वो हमारा स्व है और आपका पर है, तो स्व समय और पर समय जैसे हम कहते हैं ना स्व द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना है, ऐसा स्व समय प्रत्येक का अपना अपना उस अपेक्षा से यहाँ नहीं लेते हैं। स्व समय ने जिनागम की बात है उसको स्व समय कहेंगे और अन्य मत को पर समय कहेंगे। जब अकेला समय कहा तो ये जिनागम की बात है, समय में ऐसा कहा है ने जिनागम में ऐसा कहा है। किसने कहा है? तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इसलिए कहते हैं कि रागादिक का नहीं उत्पन्न होना ही अहिंसकता है, ऐसा जिनागम में उपदेश दिया है। ये भाव बताना था ना, अहिंसकता, अहिंसा और अहिंसकता, उससे तैयार हुआ वो शब्द। तथा उन्हीं रागादिक की उत्पत्ति ही हिंसा है, ऐसा जिनदेव ने निर्देश किया है। सेम टू सेम यही जो श्लोक नीचे देखो फुटनोट में तुलना के आगे लिखा है, अप्रादुर्भावः, अप्रादुर्भाव ने प्रादुर्भाव नहीं होना यानी उत्पन्न नहीं होना, खलु खरेखर रागादीनाम भवति अहिंसा इति, भवत्य है ना, भवति अहिंसा इति, रागादि की उत्पत्ति नहीं होना यही खरेखर अहिंसा है। तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपः, जिनागम का संक्षेप क्या है? तो रागादि की उत्पत्ति ही हिंसा है, और इसलिए अहिंसा परमो धर्म जब कहते हैं तो दूसरे को बचाने रूप अहिंसा वो परम धर्म होगा कि नहीं होगा? वो तो राग की उत्पत्ति है, शुभ भाव की उत्पत्ति है, वो तो हिंसा है। अब आगे यानी अन्य मति सब तो दूसरों को मारना ये हिंसा है और बचाना अहिंसा है ऐसे समझते हैं, परंतु दूसरों को बचाने का भाव, बचाना वगैरह नहीं, बचाने का भाव वह भी हिंसा है। ये तो जिनागम के अलावा और कोई नहीं जानता। अब आगे अत्ता चेय हिंसा अत्ता हिंसेति निश्चयो समये जो हो अपमत्तो अहिंसो हिंसो यरो यरो नेतर अपमत्तो अहिंसयो, अप्रमत्त ही अहिंसक है और इतर हिंसक है, इतर है ने जो अप्रमत्त नहीं वो कौन है? प्रमत्त तक वो सब देखो नीचे अर्थ। समय अर्थात जिनागम में ऐसा निश्चय किया गया है, निश्चयो समय, क्या कहा? आत्मा ही अहिंसा है, अत्ता चेय अहिंसा, और आत्मा ही हिंसा है। देखो प्रवचन सार की शैली आपको पता होगी। हाँ, तो जो राग उत्पन्न होता है या क्रोध है तो आत्मा को क्रोध कहा, पापा कहा था आत्मा को, पाप कहा आत्मा को, पुण्य कहा, जिस भाव से परिणत है उस जीव को उस भाव से पहचाना जाता है। तो यहाँ अहिंसा और हिंसा क्या है? तो आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है। तो कहते देखो समय अर्थात जिनागम में ऐसा निश्चय किया है, आत्मा ही अहिंसा और आत्मा ही हिंसा है। जो प्रमाद रहित आत्मा है वह अहिंसक, तथा जो इतर अर्थात प्रमाद सहित है वह हिंसक है। अब आगे 44 नंबर का, अज्जवसीयेण बंधो सत्ते मारेज माव मारेज एसो बंध समासो जीवाणम निश्चयण यस। ये हमने पढ़ा था ना अभी, इसमें भी आई थी ऐसी गाथा, समय सार में भी ऐसा आया था, अध्यवसान से ही बंध होता है, जीव मरे या नहीं मरे। ये बहुत सारे हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी। देखो सत्व अर्थात जीवों को मारो या मत मारो, हाँ समय प्रावृत गाथा 280 नीचे लिखा है रेफरेंस, अपनी हुई थी अभी अभी, मूलाचार में भी वही बात बताई। देखो सत्व अर्थात जीवों को, जीव को यहाँ सत्व कहा है, भूत भी कहते हैं ना, भूत प्राणी सत्व, सत्व अर्थात जीवों को मारो या मत मारो, बंध में जीवों को मारना या नहीं मारना प्रयोजक नहीं है, प्रयोजक नहीं है वो उसका कारण नहीं है, जीवों को मारना या नहीं मारना वो बंध का कारण नहीं है। तो इसे इतना ही सुनेंगे तो कोई तिलमिला जाएगा, तो क्या आप मारने की उपदेश कर रहे हो, जीव स्वच्छंद हो जाएगा, तो कहते सुनो क्योंकि अध्यवसाय से अर्थात रागादि रूप परिणामों से जीवों के बंध होता है, बंध जो होता है वो राग रूप परिणाम जो है मोह राग द्वेष के परिणाम है उससे बंध होता है, ना कि उस बाह्य क्रिया से। निश्चय नहीं की अपेक्षा यह बंध का सारभूत कथन समझना चाहिए। अब आगे 45 नंबर जो लिखा है वो कहाँ की है, उद्धृतेयम् तत्वार सूत्रिक सर्वार सिद्धि से लिया है। मरदुवजी अदुवजीवो अयदाचारसनिश्चिदा हिंसा पयदसनत्थि बंधो हिंसा मेत्तेन समिदीसु। जीव मरो या मत मरो तो भी यत्नाचार से रहित पुरुष के नियम से हिंसा होती है। क्या कहते हैं, हम यहाँ वहाँ चलते गए हैं बाजार में, बाजू में दुकानें हैं ना, कोई अलंकार है साड़ियाँ है, कहाँ देखते चले, उनकी तरफ, तो हमारे पैर के नीचे एक भी जीव मरा नहीं तो हमको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगा, क्योंकि हम यत्नाचार से रहित चले, कोई देख देख के नहीं चले हैं, कोई मरता तो है कि नहीं इसकी परवाह किए बिना चले तो उसका उसके पाप लगेगा ही। किंतु जो पुरुष समितियों में प्रयत्नशील है अर्थात यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके हिंसा मात्र से अर्थात प्रवृत्ति करते हुए किसी जीव की हिंसा हो जाने मात्र से बंध नहीं होता। ये मुनियों के लिए समिति, हम तो जा सकते हैं ना, तो आप भी चलते समय उतने तो प्रयत्न पूर्वक चल सकते हैं, रसोई बनाते समय सब्जियां जब देखते हैं शोधते हैं तो कितने बारीकाई से उसको शोध देख शोध कर फिर उसको हम काम में लेते हैं, उसको फिर काटते आदि है, मैं तो बिना हाँ चलो लाओ और डाल दो, गेहूं भी लाया और डाला या बाजार से रेडीमेड आटा लाया, तो हमारे घर में काम करते हैं ना वो भी कहते अरे आप कितना छान कर और देख कर और उसको ये करके फिर चक्की में बेचते हो या उसको पीसते हो, तो कहते हम तो ऐसा अभी बाजार से आटा नहीं लाएंगे क्योंकि उसमें कितने क्या क्या चले जाते होंगे कीड़े आदि, यानी अन्य मतियों को तो इतना तो एहसास हो जाता है, हम जो देख शोध कर जो कहते हैं या अपने परिणामों का यहाँ पुण्य पाप जो फल है परिणामों से होता है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रयत्नशील होकर कि उसमें किसी जीव की विराधना तो नहीं होती है, तो ये हम परिणाम बताते हैं। आप कहेंगे शुभ भाव से भी बंद होता है और शास्त्र में शुभ को भी छोड़ने को बोला है, किसके लिए? अरे जिसने वो आचरण कर रहे उसके लिए छोड़ना है और छोड़कर शुद्ध में जाना है। जो अभी अशुभ ही अशुभ में है, स्वच्छंदी है, और वो कहते रहे शुभ छोड़ना ही है ना, तो अभी हम करेंगे नहीं तो उसको छूट जाएगा, तो वो बात नहीं है। देखो हिंसा मात्र से अर्थात प्रवृत्ति करते हुए किसी जीव की हिंसा हो जाने मात्र से बंद नहीं होता। कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो बचाने का उसका अभिप्राय है, उसको तो ऐसा नहीं कहते इसने खून किया, भले वो ऑपरेशन फेल भी हो जाए, पेशेंट मर भी जाए, तो ऐसा तो नहीं आरोप आता कि इसने खून किया। तो उसके परिणाम कैसे है उस पर उसका फल निर्भर है। आगे 46 नंबर, उच्चालिदम् पाए इरिया समिदस्स निगमठाणे आबादेज्ज कुलिंगो मरेज्ज तम जोगमासेज्ज। इरिया समिति से युक्त साधु के अपने पैर के उठाने पर उनके चलने के स्थान में यदि कोई क्षुद्र प्राणी उनके पैर से दब जाए। देखो मुनि कैसे इरिया समिति पूर्वक चलते हैं, चार हाथ जमीन देख देख कर, इधर उधर देखते हुए नहीं चलते हैं, तो देखते हुए चल रहे हैं, परंतु अभी पैर रखने जाओ और उतने में कोई क्षुद्र प्राणी आकर उड़कर नीचे आके गिर पड़े या कुछ भी, और वो पैर से नीचे दब जाए, तो भी उसके निमित्त से मर जाए, तो उस क्षुद्र प्राणी के घात के निमित्त से थोड़ा भी बंद आगम में नहीं कहा है, जिनेंद्र भगवान ने नहीं कहा है। क्योंकि जैसे अध्यात्म दृष्टि से मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम को ही परिग्रह कहा है, क्या कहते हैं उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, उसको परिग्रह नहीं कहा। कोई भिखारी है वो महल के सामने है और लगातार वो महल की तरफ देख देख के अंदर ही अंदर जल रहा है कि मुझे ऐसा कब प्राप्त हो, तो उसके तो उसमें ममत्व परिणाम है, तो उसको परिग्रह कहा है। नहीं तो जिनके ये अन्य जो एकेंद्रियादि जो है, जिनके पास कोई परिग्रह ही नहीं है, कोई बाह्य में संयोग नहीं, उनको परिग्रह बिना मानना पड़ेगा, तो है कि नहीं वे परिग्रह बिना, तो ममत्व परिणाम को ही परिग्रह कहा है। वैसे यहां भी रागादि परिणाम को ही लगाया हो, हिंसा कहा गया है। 47 भी इसमें ही आ गया है, 46-47 उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके पहले जरा यहाँ 5 नंबर को फुटनोट में देखते हैं, लेफ्ट साइड में 94 पेज में, ये जो अभी हमने ऊपर देखा था, उच्चालिदम्मी पाए यानी इरिया समिति पूर्वक चलते हुए पैर उठाया और अभी रखने गए और कोई मर गया, तो वहां कहते अथ तमेव अर्थम दृष्टांत दार्ष्टान्ताभ्याम दृढ़यति। उसी को अभी यहाँ दृष्टांत और दार्ष्टांत, जो बात सिद्ध करनी है उसके लिए जो उदाहरण देते उसको कहते दृष्टांत, और दृष्टांत के द्वारा जो बात समझानी है उसको कहते दार्ष्टांत, उसको दृढ़ करते हैं। अभी ये जो उच्चालियम वगैरह वगैरह है ना, वो उन्होंने गाथा लिखी है, नहीं तस्स तन निमित्त बंदो सुमो ये देसी दो समये, यानी उसको समय में यानी आगम में उसको बंद नहीं कहा। मुच्छा परिगोच्य अज्जप प्रमाण दो दिथो, ये यही बात उन्होंने बताई है। ये जो अभी हमने देखा ना यहाँ पर मूर्छा परिग्रह ऐसे जो सूत्र कहा है, तो अध्यात्म के अनुसार जैसे मूर्छा रूप रागादि परिणाम के अनुसार उसको परिग्रह संज्ञा दी जाती है, वैसे ही यहाँ जो उसका भाषांतर हमने यहाँ पढ़ लिया है। वही बात इन्होंने यहाँ संस्कृत में बताई है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। 47 का हमने अर्थ तो पढ़ लिया है और उसकी गाथा अभी पढ़ेंगे। नहि तद्घादनि मित्तो बंधो सुहुमो विदेशियो समये मुच्छा परिग्गहोतिय अज्जप्पमाणदो भणिदो। यानी वो ममत्व के परिणाम के अनुसार वहाँ परिग्रह कहा जाता है, वैसी बात है। अभी हमने उसका अर्थ भी देख लिया है, अब आगे 48 नंबर को पढ़ेंगे। नय हिंसा मेत्तेण सावज्जेना विहिंसो होई शुद्धस्य संपत्ति अफला उत्ताजिनवरेहिं। एक कहा इसमें इसका रेफरेंस है कि नीचे नहीं है, इसका अर्थ देखते हैं। जीव केवल हिंसा मात्र से हिंसक नहीं होता है, किंतु सावध्य अर्थात सावध्य किसको कहा, राग द्वेष रूप परिणामों से ही हिंसक होता है। अतः राग द्वेषादि से रहित शुद्ध परिणाम वाले जीव के जो कर्मों का आश्रय होता है वह फल रहित है, ऐसा जिनवर ने कहा है। और हमारा कैसा है, सफल है, सफल है ने फल सहित है। कौन सा फल होगा, संसार परिभ्रमण का। ये ऐसी सब ये गाथाएं समयसार प्रवचन सार आदि में भी ऐसे ही आई है, तो वहां मूल से ही ये सभी आगम से ही चली आई ना, आगम परंपरा से आई हुई बातें हैं, किन्हीं मुनियों ने अपने मन से रची हुई नहीं है, मूल उपदेश है। भले शब्द उसमें आगे पीछे हो, भाषा के अनुसार उसमें प्राकृत के संस्कृत, संस्कृत में से अभी हिंदी में भी बताएंगे पद्यानुवाद आदि, परंतु तो मूल धारा चली आ रही है। 49 नानी कम्मस्य कयत्थम उठिदोणोथिदोय हिंसाए जदय सड़म अहिंसत्थम अपमत्तो अबहोसो। ज्ञानी पुरुष कर्म के क्षय के लिए प्रस्तुत रहता है, हिंसा के लिए नहीं। ऊपर बताए नानी कम्मस खयत्थम उठिदो न उठिदो ये हिंसाए, और वह प्रमाद रहित होता हुआ सरल भाव से अहिंसा के लिए प्रयत्न करता है। अहिंसा के लिए प्रयत्न करता है ने अपने स्वरूप में लीन रहना, क्योंकि शुभ भाव से भी हिंसा है, हमने देखा था ना, राग आदि की उत्पत्ति हिंसा है, इसलिए वह अबंधक अर्थात अहिंसक है। 50 नंबर के बाद सक्कम परिहरि यौवम असक्क निज्जम मिनिम समना तम्हा हिंसा यदने अपरिहरन्ते कथम हिंसा। साधुजन जो त्याग करने के लिए शक्य होता है उसके त्याग करने का प्रयत्न करते हैं, और जो त्याग करने के लिए अशक्य होता है उसमें निर्मम होकर रहते हैं। इसलिए त्याग करने के लिए शक्य भी हिंसा यत्न के परिहार नहीं करने पर अहिंसा कैसे हो सकती है, यानी त्याग करने के लिए जो शक्य है, जिसका हम त्याग कर सकते हैं, ऐसे जो हिंसा यतन, हिंसा के स्थान, उसका भी जो परिहार नहीं करते, उसको भी नहीं टालते, उनके अहिंसा कैसे हो सकती है। यानी जितनी हिंसा टाल सकते हैं उसके लिए भी जो प्रयत्नशील नहीं है उनके अहिंसा कैसी होगी, ये बात यहाँ बताना चाहते, अर्थात नहीं हो सकती। 51 नंबर वत्थुम पड़ुच्चतम पुण अच्छवसाणं तिभण व्यवहारो नयवत्थुदोहु बंधो बंधो अच्छप्पजोएण। वस्तु को निमित्त कर अध्यवसान अर्थात विविध विकल्प होते हैं, ऐसा व्यवहार प्रतिपादन करता है। व्यवहार क्या प्रतिपादन करता है, वस्तु के निमित्त से विविध विकल्प होते हैं। बच्चे को देख देख कर हमको प्यार उमड़ आता है, भगवान को देख देख कर हमको भक्ति आती है, तो ऐसा व्यवहार कहता है, क्योंकि वो तो उपचार का कथन करता है व्यवहार। तो कहते हैं वस्तु को निमित्त कर अध्यवसान अर्थात विविध विकल्प होते हैं, ऐसा भणई व्यवहार ऊपर लिखा ना, ऐसा व्यवहार कथन करता है, प्रतिपादन करता है, परंतु वस्तु के निमित्त से बंध नहीं होता। बंध तो अध्यवसान के संबंध से होता है। ये ऐसा लगता है कि ये समय सार के बंधाधिकार की गाथा हम पढ़ रहे हैं। ये कहाँ से दिए, 51 नंबर कहाँ से लाए उन्होंने? ये उच्चालियम की बात चल रही है इसमें। हाँ, नहीं दिया, मगर ये हमने पढ़ा है। ऐसा व्यवहार क्या कहता है, वस्तु के निमित्त से अध्यवसान होता है, पर वस्तु के निमित्त से बंध नहीं होता है। बंध तो राग के निमित्त से होगा। पुण्यसासवभूदा अणुकंपा शुद्धो वौवजो विवरीयो पावस्सहु आसव हे उंबियाणा ही। अनुकंपा, शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग, शुद्ध वो जो ये पुण्यास्रव स्वरूप या पुण्यास्रव के कारण है, वो स्वयं पुण्यास्रव स्वरूप है या पुण्यास्रव के कारण है, तथा इनसे विपरीत अर्थात अदया, अशुभ योग और अशुभ उपयोग, शुद्ध, हाँ देखो देखो नीचे देखा है उसको हम देखेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। पहला अनुकंपा, शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग ये पुण्यास्रव स्वरूप या पुण्यास्रव के कारण है, तथा इनसे विपरीत अर्थात अदया, अशुभ योग और अशुभ उपयोग ये पापास्रव के कारण है। इस प्रकार आश्रव के हेतु समझना चाहिए। ये शुद्ध उपयोग इन्हें शुद्ध उपयोग कहते उसकी बात नहीं है, उसको पुण्य का जिसके शुद्ध परिणति है, उसके जो शुभ भाव है उसको यहाँ लिख गया। देखो नीचे पढ़ेंगे, 1 नंबर की फुटनोट, शुद्ध एवं उजोगो विवरीदम दु शुद्धोपयोगश्च शुद्ध मनोवाक काय क्रिया इति अर्थ, शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगश्च आभ्याम अनुकंपा चाहिए, अनुकंपा शुद्धोपयोगो योगाभ्याम यानी शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोगी के जो अनुकंपा आदि जो है उसको यहाँ शुद्ध उपयोग कहा है। उसके आगे का पढ़ेंगे, अनुकंपा अनुकंपा शुद्धवो वो विय पुण्यस आसव दुवारम। शुभ शुभ यानी जिसके शुद्ध परिणति है उसकी बात है, उसका योग और उपयोग लिया यहाँ पर। हाँ, जिसको हम शुभ उपयोग शुभ योग कहेंगे, यहाँ भी लिखा है ना, मूलाचार मूलाराधना में भी लिखा है। और उसकी तुलना तुलना 2 नंबर कहाँ लिखा है नीचे, परसु दुख निमित्तम, वो अलग बात है। ये जो शुद्ध उपयोग की बात है, अनुकंपा शुद्ध वयोगो विय पुण्यस्य आसव द्वारम यानी अनुकंपा और शुद्ध उपयोग वो पुण्य के आश्रव द्वार है। तम विवरीदम आसवदारम पावस्य कम्मस्य और उसके विपरीत उसका उल्टा यानी जो अशुभ जो है वो पाप का आश्रव का द्वार है। शुद्ध व ओगो शुद्धश्च प्रयोगः परिणामः, शुद्ध उपयोग किसके कहा, जो शुद्ध जो है उसके जो परिणाम है उसको यहाँ शुद्ध कहा। जिसके शुद्ध परिणति प्रकट है उसके जो क्रिया है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके जो शुभ भाव है उसको यहाँ शुद्ध कहा है। क्योंकि पुण्य का आश्रय बताए ना, जो मुनि है उनके शुद्ध भाव प्रकट है, तो उनके जो क्रियाएं हैं उनका जो योग और उपयोग है, मुनियों के जो योग उपयोग चल रहे हैं बाह्य में लेना उसको, तो उसको यहाँ शुद्ध उपयोग और शुद्ध योग कहा।
शुद्ध उपयोग है, शुभ
शुभोपयोग ही है जिसके शुद्ध परिणति है ऐसे जीवों के। ये मिथ्यात्व के शुभोपयोग की बात यहाँ नहीं है। लिखा ना अभी हमने देखा, देखो शुद्धोपयोगश्च शुद्ध मनोवाक क्रिया इति अर्था। ये शुद्ध मनोवचन और काय की क्रिया है उसी को यहाँ शुद्ध उपयोग योग कहा। क्या क्या कौन सी सेकंड लाइन? अच्छा अर्थ की। हाँ इनसे विपरीत, इनसे विपरीत यानी पुण्यास्रव के कारण जो है उससे विपरीत, या जो अनुकंपा शुद्ध योग शुद्ध उपयोग इनसे विपरीत। हाँ अर्थात अनुकंपा से विपरीत, यहाँ तो सामान्य से लेना अनुकंपा से विपरीत अदया, शुद्ध योग से विपरीत अशुभ योग, और शुद्ध उपयोग से विपरीत अशुभ उपयोग। ये जो ऊपर जो शुद्ध और अशुद्ध का वो ज्ञानी के लेना और या अज्ञानी के लेना, अदया अशुभ उपयोग, और ये मुख्यता से बताइए ना। अब जो चौथे वाले को बिल्कुल पापाश्रव होगा ही नहीं, ये बात थोड़ी है। उनकी भी वो अदया कहने में आएगी, अभी एकेंद्रिय संबंधी उनके जो कुछ नहीं है या अविरति है वो उनकी अदया ही कहने में आएगी। हाँ मुनियों के तो होगी ही नहीं, ये तो मुनियों की बात ही नहीं है यहाँ पर। आश्रव के हेतु क्या है, पुण्याश्रव के हेतु कौन से और पापाश्रव के कौन से, उसकी बात यहाँ पर है। और यहाँ जो शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग उसमें हम शुभ लगा से पुण्य बंध के कारणभूत जो परिणाम है उसको लेना वहां। अब 53 नंबर कुछ कहा क्या? नवकोड़िकम शुद्धो परदोपच्छाय संपदीय काले परसुह दुख निमित्तम जय बंधयणस्थि निर्वाणम। जो पुरुष कर्म की नव कोटि अर्थात मन वचन काय और कृतकारिता अनुमोदना से, देखो हर एक में लगाना, मन में कृतकारिता अनुमोदना, वचन में कृतकारिता अनुमोदना और काय के द्वारा भी कृतकारिता अनुमोदना, इसको नव कोटि कहते हैं। तो नव कोटि से जो शुद्ध है, देखा ना, जो पुरुष कर्म की नव कोटि यानी मन वचन काय और कृतकारिता अनुमोदना से शुद्ध है उसे भूत भविष्यत और वर्तमान काल में यदि दूसरे के सुख और दुख के निमित्त से बंद होने लगे तो किसी को भी निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। जो वो नव कोटि सी जो शुद्ध है यानी मन से वचन से और काय से करना कराना या अनुमोदना रूप उसने नहीं किया है कोई भाव, और फिर भी दूसरे को सुख हुआ या दुख हुआ इसलिए इसको अगर बंद होने लगे तो कहते कोई निर्वाण को ही नहीं प्राप्त होगा। संख्या वाइज ही है, 3 × 3 9 होते हैं, करोड़ नहीं, 9 करोड़ नहीं लेना, 9 कोटि है ना, 9 वाड़ भी कहते ना ब्रह्म, 9 वाड़ वाला ब्रह्मचर्य कृतकारिता, हाँ उसके इतने भेद, 9 प्रकार से यानी जो मनोवचन काय कृतकारिता अनुमोदना से जो शुद्ध है और फिर भी दूसरा कोई उसमें सुख दुख मान लेता है तो इसको बंद होगा कि नहीं होगा? तो कहते उससे भी बंद होने लगा तो किसी को निर्वाण ही पॉसिबल नहीं है। अब 54 नंबर, तिथय रस विहारो लो असुहोणे व तत्थ पुण्य फलो वयणम च दान पूजा रंभयरम तमण लेवे। तीर्थंकर का विहार संसार के लिए सुखकर है, परंतु उससे तीर्थंकर को पुण्य रूप फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं? संसार के लिए सुखकर होता है ना, तीर्थंकर विहार करते हैं तो क्या करते हैं विहार करके? हाँ, धर्मोपदेश देते हैं। इसलिए भव्य जीव अपना स्वरूप जानकर मोक्ष मार्ग प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए वो सुखकारी है। तो इतने जीवों का कल्याण किया, उनको उपदेश दिया, तो तीर्थंकरों को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहते पुण्य रूप फल प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। पुण्य का बंध होता होगा ना उनके। तथा दान और पूजा आदि आरंभ के करने वाले वचन उन्हें कर्म बंधन से लिप्त नहीं करते हैं, अर्थात वे दान पूजा आदि आरंभों का जो उपदेश देते हैं उससे भी उन्हें कर्म बंध नहीं होता। तो क्या वे दान पूजा का उपदेश देते होंगे? हाँ, दिव्य ध्वनि में ये जो है ना, श्रावक के अभी प्रश्न आया था, श्रावक के आचार संबंधी उन्होंने उपासक अध्ययन अंग में श्रावक के जो आचार होते हैं, दान पूजा गुरुपास्य आदि, आहार दान करना, उसके लिए वो भोजन स्वयं के लिए भी बनाएंगे ना, तभी तो मुनियों को आहार दान करेंगे, तो उसमें तो हिंसा होती है। तो कहते दान पूजा आदि आरंभों का जो उपदेश देते, श्रावक के लिए जिन आरंभों का उपदेश दिया है तो श्रावकों के लिए तो पाप का कारणभूत है, परंतु ये ऐसा उपदेश दिया तो तीर्थंकर को भी पाप लगता होगा कि नहीं लगता होगा, ये प्रश्न है। तो उससे भी उन्हें कर्मबंध नहीं होता। दोनों लिए ना उन्होंने, कि उनका विहार संसार के लिए सुखकारी है तो भी उनको पुण्य नहीं लगता है, और श्रावक के लिए जो उपदेश दिया है उससे, आरंभादि का जो उपदेश है उससे उन्हें पाप भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, ये अन्य बाह्य जो कोई उनके जो क्रियाएं हैं वो औदयी की क्रिया है, वहां उनके मोह राग द्वेष बिल्कुल है ही नहीं है। हाँ, बंध ही नहीं है उनका। पहले हमने पढ़े ना श्लोक, पहले पढ़ा था उससे संबंध में, ये 55 नंबर का पढ़ेंगे। संजद धम्म कहावीय उवासयाणम सदार संतोषो तसवह विरई सिखा थावर घादो तिनाणुमदो। संयतों के धर्म की अर्थात संयम धर्म की जो कथा है उससे श्रावकों के स्वदार संतोष की और त्रसवध विरति की शिक्षा से स्थावर घात की धात हुआ है, स्थावर घात की अनुमति नहीं दी गई है। क्या कहना चाहते हैं? संयमियों के लिए जो कोई उनके जो व्यवहार का उपदेश है उनमें, उनकी जो क्रियाएं हैं, और श्रावक के लिए जो कोई उनके लिए कोई बातें बताई है, तो उससे श्रावकों को कुछ सावर घात करो ऐसा उपदेश नहीं है उसमें। समझना चाहते क्या? मुनियों के लिए तो सावर घात से भी विरति वाली बातें बताई, और श्रावकों के लिए त्रसघात से विरति का उपदेश दिया है, परंतु वो एक इंद्रियादि के उससे विरक्त नहीं, स्थावर घात से विरक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु स्थावर घात करो ऐसा वहां उपदेश नहीं है। हाँ, अनुमति है ना, हाँ वो करे तो चले ऐसी बात नहीं है। अथवा संयमी जनों की धर्मकथा, गृहस्थाओं का स्वदार, ये स्वदार संतोष, दार क्या होता है? स्त्री पत्नी को यहाँ दारा कहते हैं। स्वदार संतोष यानी स्वस्त्री वाला जो उन्होंने उपदेश दिया है, परस्त्री का त्याग, उसको स्वदार संतोष कहा। गृहस्थों का स्वदार संतोष और त्रसव वध से विरत होने का उपदेश, गृहस्थों के लिए त्रसों के वध से विरक्त होने का उपदेश दिया है। जो आगम में दिया गया है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्थावर घात की अनुमति दी है, अथवा संयमी जनों की धर्म कथा भी उपासकों के, ये उपासक यानी श्रावक, हमने अभी ग्रंथ का नाम देखा था ना, उपासकाध्ययन, तो उपासक का अर्थ होता है श्रावक, उपासकों के स्वदार संतोष और त्रसवध विरति उसकी शिक्षा रूप होती है। अतः उसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्थावर घात की अनुमति दी गई है। उसी को उन्होंने और ज्यादा समझाने के लिए दोबारा फिर बताया। तात्पर्य यह है कि संयम रूप किसी भी उपदेश से निवृत्ति ही इष्ट रहती है, उससे फलित होने वाली प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। यानी जो कोई उपदेश दिया है मुनियों को या श्रावकों को, तो मुनि जब तक अंतरंग में स्थिर नहीं है तो उनके व्यवहार में कैसे कैसे उनके व्रतादि आचरण होते हैं, महाव्रतादि का 28 मूल गुणों का वर्णन है, परंतु ये प्रवृत्ति कराने का उपदेश नहीं है। ये निवृत्ति रूप जो है अंतरंग में स्थिरता ही उपदेश का प्रयोजन है, और श्रावकों के लिए हो या मुनियों के लिए, इसलिए कहते हैं निवृत्ति ही इष्ट रहती है और उससे फलित होने वाली प्रवृत्ति इष्ट नहीं है। ये जो कुछ उस भूमिका के अनुसार प्रवृत्ति रूप जो वहां बताया गया है उसको टाल नहीं सकते हैं, इसलिए वहां है, परंतु वह कराने का प्रयोजन नहीं है। कोई मुनि योग्य प्रवृत्ति करके अपने को मुनि माने तो यहाँ तो निवृत्ति है ही नहीं, कोई निवृत्ति नहीं, अंतरंग में स्थिरता वो है ही नहीं है, और प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति करता है, तो प्रवृत्ति तो कोई प्रयोजन नहीं था उपदेश का, तो भोले जी उसी को मान लेते हैं धर्म। हाँ, आगे नंबर 56। यदि शुद्ध सविबंधो हो हिदि बाहिरयवत्थु जोएण नथ्यु अहिंस हो नाम कोई वा आदिवह हेउ। यदि बाह्य वस्तु के संयोग से शुद्ध जीव के भी कर्मों का बंध होने लगे तो कोई भी जीव अहिंसक नहीं हो सकता। यानी बाह्य वस्तु के संयोग से बंध नहीं है, यदि शुद्ध जीव को भी उससे बंध होने लगे तो कोई अहिंसक ही नहीं होगा, क्योंकि श्वास आदि के द्वारा सभी से वायुकायिक आदि जीवों का वध होता है। ये बध लिखा है, वो वध होता है। वहां राग का अभाव है, पूर्ण वितरागी के श्वासोश्वास होगा कि नहीं होगा? 13वें गुणस्थान वाले के लक्ष्मी जी को अभी पता नहीं है, अरिहंत भगवान को श्वासोश्वास है कि नहीं है? नहीं है। 13वें के अंत में श्वास का निरोध करते हैं, श्वासोश्वास नामकर्म का उदय चल रहा है ना, उनके वहां भी श्वासोश्वास है, मुनि है, उनका श्वासोश्वास चलेगा तो उसमें वायुकायिक की विराधना होगी कि नहीं होगी? तो कहते उसका पाप नहीं है उनके, नहीं तो कोई अहिंसक ही नहीं बन सकता। हम तो अरिहंत आदि यानी हमने मूर्ति मूर्ति देखी है ना, कोई श्वास करने वाले भी अरिहंत होगा ऐसा लगता ही नहीं है। हाँ, कौन से चार प्राण है बोलो? सहयोगी केवली के चार प्राण है, अभी आप ही स्वयं कह रहे हो, तो इंद्रिय प्राण कितने हो गए? इंद्रिय प्राण कितने हो गए? एक भी नहीं। अच्छा, हाँ, अभी बल प्राण में, बल प्राण कौन कौन से होते? योग की बात नहीं, बल प्राण कहेंगे उसको, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, मनोबल प्राण होगा कि नहीं होगा? नहीं है। अच्छा, ये दो हो गए, और दो कौन से रहेंगे? श्वासोश्वास और आयु। देखो, हम बच्चे भी कैसा सोचते हैं, ये हमारा सोहम है मोना कलर का छोटा, 3-4 वर्ष का था, तभी से बोलता था मुझे भगवान नहीं बनना, मैं अंदर जाऊंगा तो बाहर कैसा आऊंगा उसमें से, ऐसा कहता है। यानी ऐसे क्या कल्पना है, हमारे जैसे वो भी कोई पुरुष है ऐसा नहीं लगता ना, तो ये तो मूर्ति देखी है भगवान रूप से, कुछ करती नहीं बैठी है। तो भगवान होना है ना ऐसे मूर्ति रूप हो जाना ऐसा लगता है उनको, क्योंकि हमने तो पत्थर की मूर्तियां देखी है, मेटल की देखी है, तो उन्हें भी ऐसा लगता है भगवान होना है ना ऐसे मूर्ति हो जाना, तो कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा।
पावागम धारायम अनायिरुवट्ठियाहि जीवं मे तत्थ सुहासवतारम उद्घादेन्ते कौसदोसो। जीव में पापाश्रो के द्वार अनादि काल से स्थित है। पावागम धारायम, पाव यानी पाप, आगम यानी उसके आने वाले, यानी पापाश्रो के द्वार अनादिकाल से स्थित है। अनाई रुवठ्याहिम, उनके रहते हुए जो जीव शुभाश्रव के द्वार का उद्घाटन करता है, सुहासव दारम उग्घा देंते अर्थात शुभाश्रव के कारणभूत कर्मों कामों को करता है, वह सदोष कैसे हो सकता है।
यहाँ शुभाश्रव यानी जो पहले शुद्ध उपयोग और शुद्ध योग कहा था ना, वो शुभाश्रव कहा था। पुण्याश्रव के कारणभूत किसको कहा था, जिसको शुद्ध भाव प्रकट हुआ है उसके जो परिणाम है उसको यहाँ शुभाश्रव कहा था।
58 दोनों एक साथ है। सम्मत्तुपत्ति दंसन मोह खवये कसाय उवसामये उवसंते खवये यखीण मोहे जिनेय नियमाहवे असंखे चा तव विवरीयो कालो संखे जगुणाए सेढ़िये।
ये कुछ याद आया पढ़कर, अभी उसका अर्थ नहीं हमने पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। एक कैसी लिस्ट बताइए फिर से। सम्मत्तुपत्तिये सावय विरये अनंत कम्मं से, असंख्यात गुणा श्रेणी वाले, पहले स्थान से आगे वाला असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, उससे असंख्यात गुणा, ऐसे जो 10 अलग अलग बताए हैं, या केवली की बात करेंगे तो 11 हो जाते हैं, ऐसे स्थान बताए हैं किससे कहाँ कितने गुणा निर्जरा होती है, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा, पहले वाले से दूसरे असंख्यात गुणे, दूसरे से तीसरे असंख्यात गुणे, ये असंख्यात गुणा निर्जरा के अलग अलग स्थान तत्वार सूत्र में भी इसको बताए हैं। तो उसको हम देखते हैं नीचे अर्थ में। तो सम्मत्तुपत्ति यानी सम्यक्त्व की उत्पत्ति, प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो ये 3 कर्णों में उसके वो असंख्यात गुणा निर्जरा चालू हो जाती है। तीनों कर्णों के अंतिम समय में वर्तमान विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के जो गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य है उससे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर असंयत सम्यक दृष्टि के प्रति समय होने वाली गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। यानी करण लब्धि के अंतिम समय में जहाँ जितना गुणश्रेणी का द्रव्य है उससे प्रथमोपशम सम्यक्ति के पहले समय में असंख्यात गुणा निर्जरा है, क्योंकि उस काल अंतर्मुहूर्त काल में पहले छोटे काल तक गुणश्रेणी रूप से निर्जरा चलती है। तो आप कहेंगे क्या मिथ्यात्व अवस्था में भी गुणश्रेणी है ना, यही प्रश्न था ना आपका। हाँ, करण लब्धि में अपूर्व करण जो होता है ना, 3 करण में से अपूर्व करण, वहां से लेकर वो गुणश्रेणी रूप से रचना भी होती है और निर्जरा भी शुरू होती है। तो क्या मिथ्या दृष्टि को भी होती है? हाँ होती है। हाँ, मिथ्यात्व का उदय है और असंख्यात गुणा श्रेणी रूप से वो मिथ्यात्व के कर्म भी उदय रूप आकर खिर रहे, परंतु अनुभाग अनंत गुणाहीन होकर उदय में आ रहे, इसलिए वहां मिथ्यात्व प्रति समय अनंत गुणाहीन हो रहा है अनुभाग की अपेक्षा, परंतु उसके परमाणु तो असंख्यात गुणा खिर रहे हैं। उससे भी प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होने पर अभी वहां तो काहे की होगी, दर्शन मोहनी की तो नहीं होगी, परंतु अकेले मोहनीय कर्म में थोड़ी निर्जरा होती है। दर्शन मोहनी का तो उपशम हो गया, तो यहाँ ज्ञानावरणादि अन्य कर्मों के में भी गुणश्रेणी रूप से निर्जरा चल रही है। उस अपेक्षा अगर हम यहाँ लेते हैं तो उसकी तो पहले मिथ्यात्व अवस्था में जितनी थी उससे असंख्यात गुणा प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय में होगी, ज्ञानावरणादि अन्य कर्म प्रति समय, हाँ प्रति समय होने वाली गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। यानी पहले तो सभी कर्मों में हो रही थी, परंतु मिथ्यात्व की वहां थोड़ी ही रहेगी। अभी तो मिथ्यात्व का उपशम हो गया, मिथ्यात्व का अभी कोई उदय ही नहीं, तो गुणश्रेणी निर्जरा का सवाल ही नहीं है। तो आप कहेंगे सम्यक प्रकृति का तो होगा कि नहीं होगा, सम्यक प्रकृति की निर्जरा होगी कि नहीं वहां पर, क्यों नहीं होगी? हाँ अरे वो उपशम सम्यक तो प्राप्त किया है उसने अंतर्मूर्त काल तक, ये तो टुकड़े होने का कार्य चलेगा, अभी गुण संक्रमण का कार्य चलेगा, गुण श्रेणी निर्जरा दर्शन होने में नहीं होगी, उसका उपशम हो चुका है अभी, तभी तो उदय का अभाव है ना वहां पर, उदय का अभाव है, तीनों में से किसी का उदय नहीं है, उसी को तो हम कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक बाद में हो जाता है, बाद में तीन टुकड़े नहीं होते, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले समय से ही तीन टुकड़े होने का कार्य शुरू होता है। शुरू में गुण श्रेणी यानी गुण संक्रमण रूप से होते, गुणित प्रमाण में होता है, हर समय इतने इतने परमाणु संक्रमित होते हैं, उपशमित है, अवस्था तो उपशम की चल रही है, यानी उदय में नहीं आ रहे, परंतु अंदर पड़े पड़े उसका संक्रमण हो रहा है। तो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और मूल मिथ्यात्व, ऐसे तीन टुकड़े वहां हो जाएंगे, और जब उपशम काल पूर्ण हो जाएगा उसके बाद उसका उदय आएगा, तब हम उसको कहेंगे क्षोपशम सम्यक दृष्टि है। यहां दूसरी बात हो रही है, जब यहां प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करता है तो आयु को छोड़कर सभी कर्मों में गुणश्रेणी रूप से उसकी रचना होती है, और वो गुणश्रेणी की निर्जरा जो होती है तो मिथ्या, जब तक करण लब्धि के अंतिम समय में जितनी गुणश्रेणी थी या जितनी निर्जरा थी उससे उसके आगे उपशम सम्यक्त्व के काल में प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से उसकी निर्जरा होगी। इतनी बात ख्याल में, इसलिए प्रति समय कहा। और यहां कोई मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं समझे या दर्शन मोह की, अन्य कर्मों में भी ये असंख्यात गुणा निर्जरा चल रही है ज्ञानावरणादि में। अब कहते उससे, उससे ने अभी जो हमने सम्यक तो उत्पत्ति की बात की, उससे देश विरत के गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। पांचवे गुणस्थान वाले की जितना प्रति समय द्रव्य का निर्जरा होती है वो ये सम्यक तो उत्पत्ति के समय में होती है, उससे असंख्यात गुणा है। देखो ऐसा नियम है, चौथे गुणस्थान वाले को ये जो असंख्यात गुणा निर्जरा हुई है वो सम्यक तो उत्पत्ति के काल में है, यानी दर्शन मोह की उपशमना के काल में हुई है। चौथे गुणस्थान के ऑर्डिनरी अदरवाइज जो है शुद्धोपयोग छोड़कर अन्य कालों में उसकी गुणश्रेणी नहीं होती, गुणश्रेणी रूप रचना और उस रूप निर्जरा हर समय नहीं चलती उसकी। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने पर, यानी जब तक वो उपशम सम्यक्त्व है तब तक की बात है। असंयत, प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला असंयत लिया है, चौथे गुणस्थान वाला प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, उसका काल कितना है? एक अंतर्मूर्त, एक अंतर्मूर्त के बाद वो क्षोपशम सम्यक दृष्टि होगा, तब उसके गुणश्रेणी निर्जरा नहीं है, गुणश्रेणी रूप से नहीं है, उसकी निर्जरा नहीं है ऐसा नहीं कहा। हाँ, पांचवे वाले को कंटिन्यूअस गुण श्रेणी है, भले वो व्यापार धंधा कर रहा है तो भी हो, शुद्धोपयोग अवस्था में गुण श्रेणी ऐसी नहीं बात है, उसके तो सतत है गुण श्रेणी। पांचवे गुणस्थान के ऊपर हमेशा ही गुण श्रेणी रूप से निर्जरा चलेगी, परंतु चौथे वाले की वैसी बात नहीं है। हाँ, प्रथम यानी ऑप्शन सम्यक्त के काल में असंख्यात गुणाश्रेणी रूप से, असंख्यात गुणाश्रेणी वाली गुणश्रेणी। हाँ, तभी हो सकता है विशुद्धि बढ़े ज्यादा तो की बात है। अभी उसमें अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले के होगा, यक्षाइक करने वाले को होगा, या इस तरह से अलग अलग चौथे वाले को भी अलग अपेक्षा से आगे बताएंगे। यहाँ तो केवल सम्यक्ति उत्पत्ति के काल की बात की है। अब दूसरे पॉइंट पर देश विरत यानी पांचवें गुणस्थान वाले के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। अंतिम करणों के अंतिम समय में, हाँ, ये पूरा संयुक्त उत्पत्ति में ही हम ले सकते हैं उसको। ये अंतिम समय से लेकर वह प्रति समय असंख्यात गुणी है, वो प्रथम ऑप्शन संयुक्त जीव लेना, सम्यक्त्व की उत्पत्ति वाला जो है अंतिम समय से। दूसरा समय कौन सा है? ऑप्शन सम्यक्त्व का पहला समय, फिर दूसरा समय, फिर तीसरा समय, वो तो लगातार असंख्यात गुणी है ही है। उससे सेकंड नंबर पर श्रावक लिया यानी देश विरत। अब तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे हम, उससे सकल संयमी के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। हमने पहले में पहले प्रथम ऑप्शन सम्यक्त की उत्पत्ति होने पर असंयत को लिया, दूसरे पॉइंट पर देश विरत को लिया। तीन करण वाला वो देखो, तीन करण के साथ कोई चौथे में जाएगा, कोई पांचवे में जाएगा, कोई सातवें में जाएगा, तो वहां भी ये गुण श्रेणी का द्रव्य अलग अलग होगा। उस अपेक्षा से इसको लेना अभी तो समझ में। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त प्राप्त करने वाला कोई चौथे में जाता है, कोई पांचवे में जाता है, कोई सातवें में जाता है, तो उसका गुणश्रेणी द्रव्य भी अलग अलग होगा। अब इन जीवों से अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना करने वाले के गुणश्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। तो अनंतानुबंधी कर्म की विसंयोजना कौन करता है? हाँ, चौथे से लेकर कोई भी कर सकता है, चौथे से सातवें तक। तो ये तो देव और नर की भी करेंगे विसंयोजना, वहां उनकी विशुद्धि ज्यादा है, तो उस काल वहां भी विसंयोजना करने में भी तीन करण आते हैं फिर दोबारा। तो ऑर्डिनरी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो प्राप्त किया, उससे भी ये विसंयोजना करने वाले की असंख्यात गुणा निर्जरा है, सातवें वाले से भी इसके ज्यादा है। वो नहीं होता, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करते वो सभी जितना सत्ता में पड़ा है वो सबका सब अन्य कषाय रूप हो जाता है, अन्य कर्म रूप। और प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में क्या होता है? सत्ता में पड़ा है, दर्शन मोह जैसा उपशम नहीं हुआ है, उसमें अंतरकरण रूप उपशम नहीं हुआ है, अप्रशस्त उपशम है नहीं, एक समय वाला, एक समय का ही निषेक अन्य रूप होकर उदय में आता है। उदय वाले समय में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप होकर आता है, परंतु उदय के समय से ऊपर उसको अपने अनंतानुबंधी रूप से वो स्थित है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन किसके होगा? क्षोपशम सम्यक दृष्टि के होगा। कौन से गुणस्थान? चौथे से लेकर सातवें तक किसी के भी होगा। विशुद्धि बढ़ जाती है, नष्ट होना है ना अन्य रूप हो जाना। कभी कभी विसंयोजन होने के बाद फिर मिथ्यात्व में आता है, फिर दोबारा बांध लेता है, फिर उसकी संयोजना होती है। क्षायिक सम्यक्त्व को नहीं, अविनाभावी ऐसा है जो क्षायिक सम्यक दृष्टि का शुरू करता है, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि का जो प्रोसेस है क्षय करने का, उसमें सबसे पहले एक अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर देता है, बस उसके बाद फिर मिथ्यात्व का क्षय करेगा। यदि मिथ्यात्व का क्षय, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय आगे का प्रोसेस नहीं होगा तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन होकर वो चौथे में पड़ा है या कोई भी जो गुण स्थान है, हो सकता है फिर वहां से दोबारा मिथ्यात्व में चला जाए तो फिर दोबारा अनंतानुबंधी का बंद करता है। इसलिए वो तो कायम के लिए प्रोसेस नहीं है। हाँ, अनंतानुबंधी के लिए विसंयोजन के लिए तीन करण मांडे, फिर अंतर्मूर्त चला गया, फिर दोबारा तीन करण मांडे, तब मिथ्यात्व का क्षय किया, फिर अंतर्मूर्त रुका, फिर तीन करण मांडे, सम्यक मिथ्यात्व का नाश किया। ये पूरा क्षपणासार की प्रोसेस है। परंतु अकेला अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया इसलिए आगे का कार्य होगा ये बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात बार अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर सकता है समय दृष्टि जी, तो असंख्यात बार करता है उसका अर्थ है असंख्यात बार मिथ्यात्व में आता है, तभी तो फिर दोबारा करेगा ना, क्योंकि एक बार जिसने कर लिया है और जो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा उसको फिर दोबारा विसंयोजन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सत्ता में से तो उसने नाश कर दिया है। तो दोबारा तीन बार किया किसी ने कहेंगे तो क्या वो फिर मिथ्यात्व में गया था, अनंतानुबंधी के बांधा था, फिर वो सम्यक दृष्टि हुआ और फिर बाद में विसंयोजन किया, ये बीच में इतना समझ लेना सब। जब हम कहते हैं ना जीव प्रथम उपशम सम्यक, तो कितने बार प्राप्त कर सकता है कोई भी जीव, तो कहते पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण प्रथम उपशम सम्यक, और एक बार प्रथम उपशम सम्यक होने के बाद दोबारा प्रथम उपशम सम्यक होने के लिए बीच में कितना काल जाता है, असंख्यात वर्षों का। यानी वो उतने बार मिथ्यात्व में गया था और फिर दोबारा वो प्रथम उपशम सम्यक उसने प्राप्त किया, ऐसा भी असंख्यात बार होता है। असंख्यात वर्ष का बीच में काल गया था ना, बीच में उसको तो क्षोपशम सम्यक तो हो सकता है दोबारा अंतर्मूर्त में, परंतु एक बार प्रथम उपशम होने के बाद दोबारा प्रथम उपशम होने का सवाल कब होगा, कि जब वो तीन प्रकृति हुई थी या तो तीनों मिट जाए या फिर तीन में से वो उसका काल एक सागर के करीब रह जाए, तब दोबारा सबका उपशम कर सकता है। सम्यक तो प्राप्त नहीं करता वो बात नहीं है, क्षोपशम सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। हाँ, देखो अभी हम इसको कहते हैं ये तीसरा पॉइंट, चौथा भी देखा, अभी पांचवे पॉइंट पर। उससे दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। उससे छठे नंबर पर अपूर्वकरण आदि गुणस्थानवर्ती उपशमक जीव के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। यानी उपशमक लिया, क्षपक नहीं लिया, उससे उपशांत कषाय जीव के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। यह अपूर्वकरण आदि में अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय लिए असंख्यात गुणा। हर एक गुणस्थान के अपने अपने जो गुण श्रेणी निर्जरा है, देखो गुण श्रेणी का आयाम घटता चला जाता है, आयाम है लंबाई। गुण श्रेणी रूप से जितने निषेकों में माल बढ़ गया था ना, अब हम मान लेते हैं पहले 100 निषेकों में गुण श्रेणी रूप से रचना हुई थी, पहले निषेक में असंख्य जो कुछ दिया, दूसरे निषेक में असंख्यात गुणा, तीसरे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो 100 निषेकों में हुआ, ऊपर के गुणस्थानों में गया तो अभी 80 निषेकों में ही उसका गुण श्रेणी रूप से हो जाएगी, तो माल तो और बढ़ेगा असंख्यात गुणा, परमाणु नीचे आएंगे और कम निषेकों में बढ़ जाएंगे, तो प्रति निषेक ज्यादा उसका परमाणु का प्रमाण है और वो खिर जाएंगे तो उसका असंख्यात गुणा हो जाएगा। देख रहे, कम बच्चे हैं तो माता पिता की संपत्ति ज्यादा मिलेगी, वैसे वहां कम निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अपकर्षण का प्रमाण बढ़ता है और कम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी तरह से उसकी गुण श्रेणी बढ़ती चली जाती है, तो उपशांत कषाय में उससे ज्यादा है। फिर आठवें नंबर पर उससे अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थान वर्ती क्षपक जीव के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुण है। देखो ग्यारहवें वाले की जितनी गुण श्रेणी है उससे भी आठवें गुणस्थान वाला क्षपक उससे ज्यादा है। अब तीनों को एक साथ रखा है इसमें, उसमें भी आठवें नौवें दसवें का क्रम से ले सकते हैं। अब नौवें पॉइंट पर, उससे क्षीण मोह जीव के बारवा गुणस्थान वाले गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणाए तो डबल हुआ। दसवें पॉइंट पर, उससे स्वस्थान केवली जिनके, ये स्वस्थान केवली क्या होते हैं हाँ? सातवें गुणस्थान केवली लगाया आगे शब्द, स्वस्थान अप्रमत्त नहीं कहा हाँ, हाँ जो समुद्धात नहीं करते वो स्वस्थान, जो विहार नहीं करते ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो जो लेशा के उसमें आता है ना समुद्धात वालों प्रकरण है, उसमें स्वस्थान स्वस्थान और विहार व स्वस्थान उसकी बात यहाँ नहीं है। स्वस्थान केवली यानी सामान्य केवली, और दूसरे कौन है, समुद्घात वाले केवली। तो स्वस्थान केवली जिन यानी तेरवे वाले के गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है। और ग्यारहवें पॉइंट पर, उससे समुद्घात गत केवली जिन के, जो समुद्घात करते हैं तो एक एक समय में असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाता है। गुण श्रेणी निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुणा है, ये तो द्रव्य असंख्यात गुणा, परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा बढ़ती है, परंतु ये आगे बताइए, परंतु गुण श्रेणी आयाम का काल इससे विपरीत है। अभी जो मैंने बात की थी उसका काल यानी कितने निषेकों में गुण श्रेणी रूप से रचना होती है, कितने निषेकों में वो बढ़ता है, हमने 100 और 80 और 60 ऐसा देखा ना, तो कहते वो जो काल है इससे विपरीत है ना, वो छोटा होता चला जाता है। गुण श्रेणी आयाम, पहले तो गुण श्रेणी बड़ी थी चौथे वाले की जब उसने समय को प्राप्त किया था, अब कहेंगे तो अंतर्मूर्त भी, फिर ग्यारहवें वाले की, बारहवें वाले की, कोए तेरहवें वाले की कितनी छोटी हो जाएगी, और उसमें हाँ छोटी, उसका गुण श्रेणी का आयाम कहते हैं, आयाम यानी लंबाई, वो छोटी होती है, परंतु गुण श्रेणी में जो निर्जरा रूप द्रव्य, द्रव्य यहाँ परमाणु को कहते हैं, परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाती है और उसका आयाम का काल घटता चला जाता है, ये ग्यारह ही स्थानों में। अर्थात समुद्घात गत केवली से लेकर विशुद्ध मिथ्या दृष्टि तक उल्टे क्रम से, काल क्रम से संख्यात गुणा है, वो असंख्यात गुणा नहीं होता। विशुद्ध मिथ्या दृष्टि से लेकर ये जो 11 स्थान हमने देखे समुद्घात केवली तक, द्रव्य का जो असंख्यात गुणा निर्जरा का द्रव्य, जो द्रव्य ने परमाणु की संख्या असंख्यात गुणा बढ़ती है। अब उल्टे क्रम से काल घटता है, कितना संख्यात गुणा घटता है यानी संख्यात्वा भाग संख्या, तो विशुद्ध मिथ्या दृष्टि तक काल क्रम से संख्यात गुणा है, उल्टे हम आए रहे तो संख्यात गुणा कहेंगे, दो गुणा चार गुणा ऐसा वो संख्यात गुणा कहेंगे उसको हम। हाँ करोड़ गुणा नहीं होगा, अब यहीं रुकते हैं अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।